Welcome friends to Literature Mantra. I'm Harsh Singh, and in this lecture we'll continue our discussion on the important writers in the Elizabethan era. Okay? Now, if you remember, in the last lecture we discussed the works of Philip Sidney as well as Edmund Spenser. Okay? We also discussed what is a Spenserian stanza. Okay? Now, in this lecture we'll continue our discussion and take up first of all university wits, okay? Christopher Marlowe and the other university wits. Along with that, we'll also discuss Shakespearean sonnets. Now, I want to discuss Shakespearean sonnets because you should know what is the difference between Spenserian stanza and a Shakespearean sonnet, or the stanzaic pattern of a Shakespearean sonnet. ठीक है? Rhyme scheme पे बहुत सारे question आ जाते हैं. That's why I just want to club all of this in one place. And of course, later on we'll also discuss the important plays of William Shakespeare. ठीक है? But for now, let's discuss the sonnets of Shakespeare. Now, first of all, you should know how many sonnets Shakespeare has written. ठीक है? In total, 154. ठीक है, 154 सोनेट्स हैव बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. ठीक है, ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर इज फेमस मोर एज अ ड्रामेटिस्ट, बट आपको ये भी जानना चाहिए दैट ही हैज आल्सो रिटन वर्क्स ऑफ पोएट्री. ठीक है, एंड इन पर्टिकुलर जो सोनेट्स हैं 154 हैं. ठीक है, नाउ बिफोर डिस्कसिंग शेक्सपीरियन सोनेट, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज अ सोनेट. सोनेट क्या होता है? सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. ठीक है, एंड जनरली वी रिगार्ड अ पेट्रार्कन सोनेट एज अ स्टैंडर्ड. ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? एज आई टोल्ड यू 14 लाइन्स, आउट ऑफ विच 8 लाइन्स आर कॉल्ड अ ऑक्टेव. ठीक है, ऑक्टेव कहते हैं, ओ सी टी ए वी ई, ऑक्टेव. एंड द रिमेनिंग 6 लाइन्स आर कॉल्ड अ सेस्टेट. ठीक है, एस ई एस टी ई टी, सेस्टेट. सो दिस इज व्हाट द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट इज. नाउ कमिंग टू शेक्सपीरियन सोनेट, क्या डिफरेंस है दोनों में? In the Shakespearean sonnet, there are 3 quatrains, or let's say 3 stanzas of 4 line each. ठीक है, उसके बाद final एक couplet है 2 lines का, 2 line होते हैं इसमें. Otherwise, in terms of number of lines or total number of lines, it is the same. Both have 14 lines. ठीक है, so in the exam they can ask you what is the rhyme scheme. The rhyme scheme of a Shakespearean sonnet is AB AB. ठीक है, उसके बाद CD CD, then EF EF. And finally, the final couplet has GG. ठीक है, GG. So, दो फैक्ट तो आप याद रखना, that in total Shakespeare has written 154 sonnets, and what is the stanzaic pattern of a Shakespearean sonnet? ठीक है. Now, another fact you should know about the poems of William Shakespeare is that in many of the poems, you'll find these two initials H.W. ठीक है, H.W. What is the meaning of these two initials? See, William Shakespeare had a patron, friend and patron. उनका नाम था Henry Rio Thesley. ठीक है, W R I O T H E S L E Y, Rio Thesley. ठीक है, the W is silent. Now Henry Rio Thesley also, who was the Earl of Southampton. ठीक है, it is a place in England. He was both a friend as well as a patron of Shakespeare. So many of the poems that William Shakespeare has written, he has dedicated all of this to his friend. ठीक है, तो दैट्स वाई ही यूजेज द इनिशियल्स H.W. तो फर्स्ट फैक्ट तो आपको ये पता होनी चाहिए. आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट ऑल हिज 154 सोनेट्स, ठीक है, कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फ्रॉम द फर्स्ट टू द 126th पोयम, मतलब सोनेट, एंड देन आफ्टर 127 टू 154. नाउ व्हाट इज द लिंक बिटवीन द फर्स्ट टू द 126th सोनेट? दीज सोनेट्स आर जनरली रिफर्ड टू एज द फेयर यूथ सोनेट्स. ठीक है, फेयर यूथ सोनेट्स, एफ ए आई आर, फेयर यूथ सोनेट्स. नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड सो? बिकॉज दीज सोनेट्स आर अड्रेस्ड टू अ यंग मैन, ठीक है, हु इज सोशली सुपीरियर टू द स्पीकर. ठीक है, हुएवर इज द स्पीकर ऑफ दीज सोनेट्स, ठीक है, अड्रेसेज दीज सोनेट्स टू अ यंग मैन हु इज सोशली सुपीरियर. दैट इज व्हाई दीज सोनेट्स आर कॉल्ड फेयर यूथ सोनेट्स. नाउ उसके बाद, नो, फ्रॉम द सोनेट 127 टू 152, ठीक है, These sonnets are addressed to a woman, ठीक है, the so-called dark lady of Shakespearean legend, ठीक है, dark lady sonnets इसे कहते हैं, because all of these sonnets are addressed to a lady who seems to be of dark complexion, ठीक है, and the last two sonnets, ठीक है, from 153 and 154, ये जो दो हैं, these are addressed to a classical god called Cupid, and the, you know, Cupid is a god of love, ठीक है, so these two are addressed the god. From 127 to 152, they are called the dark lady sonnets because they are addressed to a dark lady, or let's say a lady whose complexion seemed to be dark in those times, whose complexion seemed to be dark in those times, in the times of Shakespeare. Now, how dark her complexion was or how fair her complexion was, it is a matter of, you know, debate and speculation, okay? बट जनरली दिस इज व्हाट द रेफरेंस इज. नाउ उसके बाद अगर आपको जो सोनेट्स हैं वो पढ़ना है आपको, इफ यू वांट टू रीड दोज सोनेट्स, ऑफ कोर्स 154 सोनेट्स आर टू मेनी, बट रीड एट लीस्ट सम ऑफ द सोनेट्स, ठीक है. एंड ऑल ऑफ द सोनेट्स आर जस्ट रिफर्ड टू बाय द फर्स्ट लाइन, बिकॉज विलियम शेक्सपियर डज नॉट गिव एनी टाइटल टू एनी ऑफ द सोनेट्स, ठीक है. सो इफ यू वांट टू रीड द इम्पोर्टेंट सोनेट्स और द वेरी फेमस सोनेट्स, रीड सोनेट नंबर 16, 18, ठीक है, उसके बाद सोनेट नंबर 27, ठीक है, एंड देन 98, देन सोनेट नंबर 104, ठीक है, उसके बाद 106 है, 116, 129, 130 एंड 134. दीज आर अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट फेमस सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है. बहुत ही फेमस कोटेशंस मिल जाएंगे आपको, बहुत ही फेमस लाइंस मिल जाएंगे आपको इफ यू वांट टू रीड ऑल ऑफ दिस. एंड सी नाउ जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सोनेट्स शेक्सपियर राइट्स, लेट मी रीड आउट फ्यू लाइंस, ठीक है. दिस इज फ्रॉम सोनेट नंबर 116. नाउ इसमें एक बहुत फेमस लाइन है, दैट लव्स नॉट टाइम फूल, ठीक है. एंड ब्रॉडली मतलब ये है दैट प्यार वक्त का गुलाम नहीं होता, मतलब ये कि लव शुडंट चेंज विद टाइम, ठीक है. सो लेट मी रीड आउट फ्यू लाइन्स और लेट मी रीड आउट द इंटायर पोएम, ठीक है. कोट, लेट मी नॉट बी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पीडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव. ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन. इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क, दोज वर्थ अननोन. Although his height be taken, love's not time's fool. Though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come, love alters not with his brief hours and weeks. ठीक है? Look at this line. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. Unquote. ठीक है? So look at how Shakespeare describes true love. That love is not time's fool, ठीक है. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. मतलब सब कुछ अगर बर्बाद भी हो जाए तब भी प्यार को बदलना नहीं चाहिए. So that is what the message is of this sonnet, ठीक है. And I chose this sonnet because you know it is on a topic or a issue that was perhaps as admirable in Shakespeare's time and it is admirable in today's time, which is love. ठीक है. एंड वेन यू रीड द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर यू विल फाइंड मेनी मेमोरेबल सच लाइन्स, ठीक है, विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग टू मेक योर आंसर्स साउंड बेटर, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस लेट्स टेक अप प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, इन पर्टिकुलर द यूनिवर्सिटी विट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ इन अ प्रीवियस लेक्चर आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन द फर्स्ट ट्रेजेडी वॉज रिटन और व्हाट वॉज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश दैट वॉज रिटन, देन फर्स्ट कॉमेडी दैट वॉज रिटन, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी विट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वर द राइटर्स हु आर जनरली कैटेगराइज्ड एज द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है. ऑफकोर्स द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड इज क्रिस्टोफर मार्लो, सबसे इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट रॉबर्ट ग्रीन, थर्ड थॉमस नैश NASHE, उसके बाद थॉमस लॉज LODGE लॉज, उसके बाद जॉर्ज पील PEELE पील, उसके बाद थॉमस किड KYD किड, ठीक है. एंड फाइनली वी हैव वन मोर नेम कॉल्ड जॉन लाइली, ठीक है, जॉन लाइली LYLY. सो ऑल ऑफ दीज राइटर्स ड्रामेटिस्ट आर क्लब्ड अंडर द यूनिवर्सिटी विट्स. नाउ अनदर क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज व्हाई आर दे कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स. द सिंपल आंसर इज दैट ड्यूरिंग दोज टाइम्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन वॉज वेरी वेरी रेयर, ठीक है. आजकल तो हर कोई यूनिवर्सिटी चल जाता है, बट इन दोज टाइम्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन वॉज वेरी रेयर एंड दीज राइटर्स वर एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी. सम वर एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सम अदर्स वर एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है. एंड बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर इन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में ही है ये, ठीक है. एंड दे कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन दैट आउट ऑफ दीज नेम्स which are included in the university wits, there is one dramatist who was not university trained, okay, not university trained, name that writer, okay, and the correct name is Thomas Kidd, okay, Thomas Kidd, KYD Kidd. Now, despite not being university trained, he is also clubbed as the university wits, okay. Now, after this, you should also know who coined this phrase university wits, because during their lifetime, all these dramatists, ठीक है, चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लो हो, रॉबर्ट ग्रीन एंड सो ऑन, दिस टर्म और दिस फ्रेज वॉज नॉट यूज टू डिस्क्राइब देम, ठीक है. इट इज ओनली लेटर ऑन दैट अ पर्सन कॉल्ड जॉर्ज सेंट्सबरी, ठीक है, जॉर्ज सेंट्सबरी SAINTSBURY सेंट्सबरी, ही वॉज अ राइटर एंड ही कॉइंड दिस फ्रेज यूनिवर्सिटी विट्स, टू डिस्क्राइब दीज राइटर्स, और तभी से इनका टाइटल पड़ गया यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है. सो रिमेंबर द नेम ऑफ जॉर्ज सेंट्सबरी. नाउ उसके बाद इट गोज विदाउट सेइंग दैट अलॉन्ग विद नोइंग द नेम्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है, यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू नो दे कैन गिव यू फ्यू ऑप्शंस एंड दे विल से व्हिच ऑफ दीज फोर ऑप्शंस represents the university wits, or who were included in the university wits, or who is not included in the university wits. तो आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए. After that, you should be aware of the major works of these writers, ठीक है, particularly Christopher Marlowe. इन पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए ये ढंग से करके जाना, ठीक है. Now, for example, some of his important works are, first, Tamburlaine the Great, ठीक है, Tamburlaine the Great, ये इनका work है, this is very famous, ठीक है. And broadly speaking, this is about the Mongol, you know, conqueror who is called Timur. Timur in India, जिसको कहते हैं. तो Tamburlaine एक तरीके का नाम का एक वर्जन है, but it refers to that Mongol conqueror, ठीक है. He was a very brutal, you know, ruler. So it just describes his rise to power, ठीक है, उसके बारे में है ये. After that, the next work of Christopher Marlowe is The Jew of Malta, ठीक है, The Jew of Malta. They can ask you, what is the name of this Jew in this work, The Jew of Malta? His name is Barabas, ठीक है, Barabas, Barabas. He is a very famous character, ठीक है, इसका नाम याद रखना आप. उसके बाद, we all know Dr. Faustus, ठीक है, this is perhaps one of the famous, most famous works of Christopher Marlowe, ठीक है, in which Dr. Faustus is there who sells his soul to the devil, and in return the devil gives him a lot of knowledge, ठीक है, but selling his soul itself is a sinful activity. And there is a devil or intermediary of the devil, ठीक है, called Mephistopheles, ठीक है, Mephistopheles. एक तरीके का समझ लो कि यमदूत है, ठीक है, यमदूत बोल लो इसको या शैतान बोल लो इसको, ठीक है, who finally takes away the soul of Dr. Faustus at the end, ठीक है. Now after that, another important work of Christopher Marlowe is called Dido, Queen of Carthage, ठीक है, Dido, Queen of Carthage, Carthage, Carthage. So remember that the pronunciation is Carthage, but spelling hai C-A-R, theek hai, C-A-R-T-H-A-G-E, Carthage. Now Carthage is a place in Europe, theek hai, uske upar hai ye. So this work is based on the story of Dido. Dido was a queen, and Aeneas, jo aap Virgil ka Aeneas aapne padha hoga, Aeneid padha hoga, to jo hero ka naam hai Aeneas hai, A-E-N-E-A-S, Aeneas. So it's about their story, theek hai, basically Dido falls in love with Aeneas, बट इनीज डजंट मैरी हर, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है, ठीक है. नाउ उसके बाद एक और वर्क है इनका, क्रिस्टोफर मालो का, इट्स अ पोएम, ठीक है, इट्स कॉल्ड हीरो एंड लियांडर, ठीक है, हीरो एंड लियांडर, LEANDER, लियांडर. नाउ दिस इज अ नॉन ड्रामेटिक वर्क, ठीक है, इट्स अ पोएम, बट इन हिज लाइफ टाइम क्रिस्टोफर मार्लो कुड नॉट कम्प्लीट इट, ठीक है, सो ये इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड वर्क है. However, after his death, ठीक है, a person called George Chapman, ठीक है, George Chapman, C-H-A-P-M-A-N, George Chapman completed this, and finally it was published later on, after the death of Christopher Marlowe, ठीक है, in the year 1598 में. And if you remember, Christopher Marlowe dies in the year 1593, ठीक है, तो 5-6 साल पहले ही मर गए थे वो. But this work, Hero and Leander, was extended, ठीक है, and completed by George Chapman. तो ये भी एक fact है जो कि आपको पता होना चाहिए. They can give you some questions on this as well. Now, after that, you should remember one more fact about Christopher Marlowe, that he is famous for using blank verse, ठीक है, blank verse in his dramas. And you should know what is blank verse, ठीक है, blank verse की definition पता होनी चाहिए आपको. Now, with respect to some other works by the other university wits, ठीक है, in particular आपको दो और work के बारे में पता होना चाहिए. एक, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड. सी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्पेनिश ट्रेजेडी अर्लियर, ठीक है, बट जस्ट अ क्विक रिकैप, ठीक है, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज अ एग्जांपल ऑफ अ रिवेंज ड्रामा और रिवेंज ट्रेजेडी. इसमें होता क्या है, नो, द हीरो सीक्स जस्टिस फॉर द लॉस ऑफ हिज सन, मतलब उनके बेटे को किसी ने मार दिया है, एंड देन व्हेन ही फाइनली फाइंड्स आउट दैट हु द कल्प्रिट इज और हु द मर्डरर इज, ही डजंट गेट जस्टिस बाय द राइटफुल मीन्स, सो ही टेक्स द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स. उसके बाद मर्डरर को वो खुद भी मार देता है, बेचारा खुद ही मर जाता है वो, ठीक है. सो इट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेनेकन ट्रेजेडी, ठीक है. सो ये आप याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड, ठीक है. नाउ एक और वर्क है, इट्स अ वर्क बाय जॉन लाइली, ठीक है, इट्स कॉल्ड यूफ्यूज द एनाटमी ऑफ विट, ठीक है. यूफ्यूज की आप स्पेलिंग नोट कर लो, EUPHUES, ठीक है, यूफ्यूज. ये तो हुआ लिटरल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, बट इन इंग्लिश द रियल प्रोनाउंसिएशन इज जूफ्यूईज, जूफ्यूईज, ठीक है. एंड वॉट इज दिस वर्क अबाउट, किस चीज के बारे में है ये, द एनाटॉमी ऑफ विट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट और द नेम ऑफ द हीरो इज यूफ्यूज, ठीक है. एंड आफ्टर पब्लिशिंग दिस वर्क जॉन लाइली ऑल्सो पब्लिश्ड अनदर सीक्वल, ठीक है, एक कनेक्टिंग पार्ट जिसको सीक्वल बोलते हैं, दैट वॉज टाइटल्ड यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है. द फर्स्ट वन वॉज कॉल्ड यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, द सेकेंड वन और द सीक्वल इज कॉल्ड यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ठीक है, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1580. Now, why is this work famous? Because of the dialogues that are there, ठीक है, and the use of extreme rhetorical mannerism. उसके वजह से है ये. And in literature, there is also a word called euphuism. इसी character पे और ये जो तरीके हैं dialogues के, इसी पे एक word है euphuism. EUPHUISM, ठीक है. क्या होता है euphuism? It has been derived from the novel of John Lyly, ठीक है. What are the characteristics of this? Elaborate wordplay. ठीक है, सिमिलीज आर देयर, मेनी सिमिलीज आर देयर, मेटाफर्स आर देयर, मेनी एंटी थीसिस इज देयर, ठीक है, इन द फ्रेजेज एंड द वर्ड्स दैट द कैरेक्टर्स यूज, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मैनरिज्म, MANNERISM, ठीक है, मैनरिज्म. सो विद रिस्पेक्ट टू द वर्क्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, रिमेंबर दीज, ठीक है, द वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉन लाइली, एंड देन थॉमस किड, हिज वर्क इज कॉल्ड द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू द वर्ड यूफ्यूइज्म, एक्सट्रीम मैनरिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम रिटोरिकल मैनरिज्म, उसे कहते हैं यूफ्यूइज्म, और वो इसी नॉवल से आया है, ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट और इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस एलिजाबेथन थिएटर, ठीक है, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट एंड द फेमस थिएटर्स दैट वर देयर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड. उसके बाद वी विल फोकस ऑन द ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर. Afterwards, we will also discuss Ben Jonson, especially the comedy of humors, okay? Because the works of Ben Jonson are also very important. And as a quick recap, in this lecture, we took up Shakespearean sonnets, okay? We also went through what is the difference between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. We saw what was the rhyming scheme or the stanzaic pattern of both of this, okay? What is the difference? Afterwards, we went through one of the sonnets of Shakespeare, which was sonnet number 116. Okay, I told you about the important sonnets which you can read and find very memorable lines. Okay, jin lines ko aap quote bhi kar sakte ho apne answer writing mein. And finally, as I told you that we discussed the works of Christopher Marlowe and all the major university wits. Okay, so let's carry on in the next lecture with the works of Shakespeare, Ben Jonson, and Elizabethan theatre in general. Okay.